क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आज हमारे मध्य में श्रीमती अंजू घरभरन जी आई हुई है। आज का विषय है न्यूजीलैंड में हिंदी का प्रचार प्रसार। श्रीमती अंजू घरभरन जी के बारे में दो शब्द। आपने आगरा विश्वविद्यालय से BA हिंदी पूरी की है। आपका जन्म भारत आगरा में हुआ था। आप पिछले लगभग 40 सालों से मॉरिशस में हैं। आप हिंदी स्पीकिंग यूनियन के महासचिव पद पर पिछले 15 सालों से कार्यरत हैं। इसके अलावा आप इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय उच्चायोग द्वारा संचालित साहित्य संवाद मासिक कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर भी है और हिंदी की सेवा में आप पिछले कई सालों से लगी हुई हैं। श्रीमती अंजू घरभरन जी MBC के स्टूडियो में और आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए।
तो श्रीमती अंजू जी, आप ने एक निजी दौरे के संदर्भ में न्यूजीलैंड का दौरा किया
जी,
जहां पर आपकी भेंट हिंदी पढ़ने वालों या फिर पढ़ाने वालों से हुई, इसके बारे में कुछ बताइए हमें।
गुरु जी ऐसा है कि हिंदी अब बड़ी दुनिया है दिखने में भी, और जहाँ भी हम सोचें वहाँ तक हिंदी पहुँची हुई है। हिंदी अब कहाँ नहीं है, आज हिंदी केवल भारत की राजभाषा नहीं, बहुत दूर तक आज हिंदी का राज है। मॉरिशस से सुदूर दक्षिण प्रशांत महासागर में एक टापू है न्यूजीलैंड, जिसकी मैंने यात्रा की। वहाँ पर अध्यापकों से भेंट हुई, अध्यापकगण यहाँ पर हम आप को गुरुजी से संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे ये संबोधन मास्टर जी से किया जाता है। ये एक अंतर मैंने पाया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं मॉरिशस में थी, तो वहाँ पहुँचते ही जब मैं एक गुरुजी से मिली, वे फिजी के रहने वाले थे और अब नहीं हैं, अब वो ऑकलैंड में पढ़ाई करवाते थे, पर ये प्राइवेट था सब संस्थान। जहाँ भी शिक्षा होती है हिंदी की, शिक्षण का प्रयास किया जाता है, वे सब प्राइवेट चलता है, और वहाँ पर उनको मास्टर जी के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी 2013 में जो अनुसंधान के अनुसार हिंदी वहाँ की चौथी भाषा है।
अच्छा।
प्रथम भाषा है अंग्रेजी, द्वितीय है माउरी, जो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो माउरी के नाम से जाने जाते हैं और माउरी ही उनकी भाषा है। तृतीय भाषा है समुआन, जो समुआ टापू है उस टापू की भाषा है समुआ, और चौथी भाषा आती है हिंदी। यहाँ पर चौथी भाषा होते हुए भी पहले जब न्यूजीलैंड में भारत से लोग गए, जो भारतीय वहाँ पर पहले पहुँचे वे थे पंजाबी और गुजराती
जी।
तो वहाँ पर पंजाबी और गुजरातियों का भी, इन भाषाओं का भी प्रचलन खूब है, और सामाजिक संस्थाओं में ऐसी बैठकाएं जिन्हें हम मॉरिशस में बैठकाएं कहते हैं, वहाँ पर ये सप्ताहांत स्कूलों में पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे से ये शिक्षण चलता है वहाँ पर।
तो इस प्रकार से जो बच्चे हिंदी पढ़ने आते हैं
जी,
किस मूल के बच्चे होते हैं, न्यूजीलैंड के बच्चे होते हैं या फिर जो बता रही है फिजी के परिवार के?
न्यूजीलैंड के छात्रों की संख्या कम है, पर जो भारतीय वहां पर पहुंच चुके हैं उनकी संख्या अधिक है, जो कि माता पिता का एक प्रयास है कि वो घर पर हिंदी बोलते हैं और अपने बड़े जन जैसे दादा दादी नाना नानी उनके साथ उनका संपर्क बना रहे, चाहे वे भारत जाकर मिलें या जब उनके भारतीय लोग जो वहाँ जाते हैं उनसे संपर्क, भाषा उनकी हिंदी रहे ताकि वे जान सकें और अपनी भाषा अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, इसलिए ये प्रयास बहुत अच्छे रूप से चलता है वहाँ पर।
तो जो पढ़ाई होती है वो उसका माध्यम क्या होता है, अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी या
कुछ शब्द अंग्रेजी में बताने पड़ते हैं छात्रों
अच्छा,
को
अच्छा।
नहीं तो माध्यम हिंदी ही है, और वहाँ पर जो ज़्यादा हिंदी पढ़ाने वाले हैं वे फिजी से आए हुए हैं
अच्छा।
क्योंकि फिजी जो गिरमिटिया देश है वहाँ पर तो दूसरी भाषा है, उनकी तो द्वितीय भाषा है हिंदी, और वहाँ से जो गुरुजन जिन्होंने न्यूजीलैंड में आके अपना वास किया है वे हिंदी से जुड़े हुए हैं। इस माध्यम से वे प्राइवेटली अपनी संस्थाएं चलाते हैं जहाँ पर के सभी हिंदी भाषा नहीं बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे तबला क्लास है, डांस क्लास है, ये सब बहुत सुचारू रूप से चलता रहता है।
तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो एक तरह से मॉरिशस में और वहाँ पर की जो स्थिति है एक तरह से समानता है।
समानता है, सामाजिक संस्थाओं ने भी बैठकें शुरू कर दी हैं ताकि वे हिंदी से और अन्य भाषाओं से जुड़े रहें, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, ये सब भाषाओं से वहाँ के बच्चे जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से कट ना जाएं अन्य देश में।
तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब यहाँ पर और वहाँ की जो स्थिति को देखते हैं, समानताएं देखते हैं, तो मॉरिशस की याद नहीं आती है।
जी बिल्कुल, मॉरिशस की बहुत याद, जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत सी समानताएं दिखी, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर भी बेस्ट FM पे पूरा दिन गाने सुनते हैं गीत, तो वहाँ पर भी ऐसा है, TV पर भी धारावाहिक आते हैं, रेडियो पर भी, वहाँ पर जो ऑकलैंड में मैंने सुना वो तराना रेडियो पूरा दिन 2400 घंटे हिंदी में है। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे वहाँ पर लगी, जो हम वाचन प्रतियोगिता यहाँ पर करते हैं, हिंदी स्पीकिंग यूनियन करता है, अन्य संस्थाएं हिंदी प्रचारनी सभा करती है, वैसे ही वाचन प्रतियोगिता जो कि एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट कहते हैं हम, वो वहाँ पर बहुत अच्छे से करते हैं, और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो वाचन प्रतियोगिताएं रेडियो पर प्रसारित होती हैं ताकि अन्य छात्र उनसे प्रोत्साहित होकर भाग लें, और ये एक महीने दो महीने नहीं हर मास एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है।
तो अंजू जी, भारत और मॉरिशस के बाहर एक हिंदी भाषी देश में, न्यूजीलैंड जैसे देश में हिंदी को बच्चों को पढ़ते हुए या सुनते हुए देखकर आपके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है?
ये तो मेरा तो मन गदगद हो गया जब मैं वहाँ पर गोरों को भी सुनती हूँ कि वे गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, और मंदिर में गई तो वो आरती गा रहे हैं, तो मन तो प्रफुल्लित हो गया ये देखकर, और उनका उच्चारण जो था वो कितना शुद्ध था ये मैं बयान नहीं कर पाती ऐसे। पर मैं ऑकलैंड में रही जो कि एक पूर्व दो भागों में है न्यूजीलैंड, तो जो साउथ आइलैंड है उसमें वेलिंगटन में बहुत अच्छे से हिंदी भाषा का पठन पाठन होता है, और जैसा कि विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ यहाँ पे, तो मेरे को दो बार सुनीता नारायण जी से भेंट हो पाई यहाँ पे मॉरिशस में, एक बार वे पहले भी आई थी और एक बार वे विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आई थी, तो बहुत अच्छा लगा। वो वहाँ पर सुचारू रूप से कक्षाएं चलाती हैं, और अब तो ऐसा प्रयास हो रहा है कि न्यूजीलैंड में सरकारी पाठशालाओं में भी हिंदी पहुँचने वाली है, तो ये एक बहुत सुखद समाचार है हमारे लिए कि हिंदी का, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हिंदी आज सीमित नहीं है, आज उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, और इससे बड़ी क्या हो सकती है कि सुदूर प्रशांत सागर में भी टापुओं में हिंदी बोली जा रही है।
तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है।
जी बिल्कुल, और ऑकलैंड में जो मैं पाठशाला में गई थी, वे हेंडरसन, एक वहाँ पे क्षेत्र है जिसको हेंडरसन कहा जाता है, वहाँ पर सत्येन शर्मा नामक एक व्यक्ति से भेंट हुई, और वे वहाँ पर बहुत सुचारू रूप से हिंदी का पठन पर, वे फिजी के रहने वाले हैं पर न्यूजीलैंड में सेटल हो चुके हैं, और बहुत अच्छे से वे हिंदी का पठन पाठन वहाँ पर कक्षाओं में चलाते हैं, जो कि सप्ताह अंत भी है और सप्ताह में भी है, और ये शिक्षण जो है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक का है,
और इसमें परिवारों का पूरा सहयोग रहता है।
बिल्कुल, माता पिता तो जाके लेके आना, पढ़ाना, घर पर भी उनको कार्य करवाना, और एक सबसे बड़ा प्रयास कि वे बोलते हिंदी हैं, बाहर में चाहे अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हो पर आपस में परिवार में जो संबंध है वो हिंदी। मेरे ही जो बहन के छोटे बच्चे हैं वे सब हिंदी में ही घर में बात करते हैं, ताकि किसी दिन नाना नानी वहाँ पहुँचे, किसी दिन दादा दादी वहाँ पहुँचे, तो वे उनसे भी संपर्क टूट ना जाए भाषा के कारण, तो वे हिंदी का प्रयोग करते हैं।
तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि विदेशों में इस प्रकार से हिंदी की पढ़ाई हो रही है और माता पिता इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं
जी,
और घरों में भी जो बच्चे हैं वो हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं।
हाँ, तो मैंने तो जो अनुभव किया, तमिल परिवार है तो वे तमिल में बात कर रहे हैं, बंगाली परिवार है तो वे बंगाली में कर रहे हैं, और मंदिरों में जाकर पाठशालाओं, जो सप्ताहांत पाठशालाएँ हैं वो बहुत सुचारू रूप से वहाँ चलती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा।
तो अगर आपको मौका मिले वहाँ पर जाने के लिए और उन लोगों से फिर से मुलाकात करने के लिए,
अवश्य ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं एक बार फिर उस देश में पहुँच के हिंदी के लिए कुछ कर पाऊँ। अब ज़्यादा अब देखिए विश्व हिंदी सचिवालय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम बहुत से प्रयास कर सकते हैं कि गुरुजनों और अध्यापकों से प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज हम उनसे संपर्क कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जिससे यहाँ के छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए और यहाँ के छात्र जैसे कि एक इंटरैक्शन प्रोग्राम कर सकते हैं, वहाँ के छात्र यहाँ के छात्रों से जुड़ जाएं तो बहुत सुंदर कार्यक्रम हो सकते हैं। आज तो प्रौद्योगिकी ने दुनिया चोटी कर दी है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब विश्वास नहीं होता है कि भारत से बाहर, मॉरिशस से बाहर, इतनी सुदूर देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए न केवल पढ़ाई होती है, उसका प्रचार प्रसार भी होता है।
बिल्कुल, और वहाँ के पुस्तकालयों में मैंने हिंदी की पुस्तकें देखी तो मन गदगद हो गया। बहुत अच्छा है ये, एक छात्रों के लिए भी कि उनके लिए पठन सामग्री उपलब्ध है वहाँ पर ये, और माता पिता का प्रयास भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे वे पठन सामग्री घर पर लाते हैं, बच्चों को के साथ समय देते हैं, धारावाहिक देखने का भी, यहाँ पर आजकल धारावाहिक बहुत चलते हैं, दादा दादी नाना नानी बहुत जुड़े हुए हैं धारावाहिकों से, पर वहाँ मैंने देखा है कि बागों में जाकर जो गुरुजन हैं वे छोटे से बाग में जाकर ऐसे अध्यापन कार्य करते हैं, खुले बागों में जाकर सप्ताहांत में दिशाओं का, रंगों का, आकारों का ज्ञान बांटते हैं, जो खेल खेल में ही सब सफलतापूर्वक बच्चों के साथ, ऐसा विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है और वे हिंदी के माध्यम से ऐसा ज्ञान अर्जित कर पाते
तो
हैं।
जिस देश में कक्षा में हिंदी बोली जाती हो, घर में बोली जाती हो हिंदी, और जो सीरियल्स है उसको, उसके माध्यम से हिंदी का भी प्रचार प्रसार होता
और
है।
गीत तो आज बहुत बड़ा माध्यम है, जो चाहे वे गीत के शब्द नहीं समझ पा रहे हैं फिर भी गीत अच्छे से गा लेते हैं हिंदी के।
तो ऐसे देश में हम कह सकेंगे कि हिंदी का भविष्य
उज्जवल
है, उज्जवल है, और कभी भी वहाँ पर हिंदी मर नहीं सकती।
ना, मरने का तो सवाल ही नहीं है, दुनिया में आज हिंदी मर नहीं सकती है, दुनिया में हिंदी बढ़ रही है।
हाँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बच्चे केवल पढ़ने के लिए हिंदी सीखते हैं और हिंदी का बात करते हैं,
नहीं वहाँ पर मैंने देखा पर तो विज्ञापन तक हिंदी में है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है कि अंग्रेजों के देश में भी हिंदी में विज्ञापन है, तो और माता पिता भी खुश हैं ऐसे विज्ञापनों से, अपने बच्चों को एक उदाहरण देकर वे समझाते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है जो मुझे मिला वहाँ पर जाकर।
एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कभी क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मॉरिशस के जो बच्चे हों उधर कभी जाएं, उधर के बच्चे कभी इधर आएं, थोड़ा सा इस प्रकार के कार्यक्रम।
यही तो मैंने कहा विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कार्यक्रम कर सकते हैं। बहुत सी संभावनाएं हैं, आज तो हिंदी विश्व भर में बड़े मंचों पर छाई हुई है, आज यूएन में हिंदी पहुंची हुई है, और चाहे माध्यम तो हमारे मंत्रियों का यही रहा ना कि हिंदी में बातचीत हो, तो हिंदी की बातचीत यहाँ से अधिक मुझे लगा कि वहाँ के परिवार, क्योंकि हर चौथा व्यक्ति भारतीय है वहाँ पर, हर चौथा व्यक्ति भारतीय माना जाता है। जब चौथा व्यक्ति भारतीय है तो आप सोचिए हिंदी कितनी ज़्यादा प्रचलित है वहाँ पर।
तो आपने जो विचार व्यक्त किए बहुत अच्छा लगा
जी,
इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को आप दे रही है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है, बस थोड़ा सा इसको मौका दिया जाना चाहिए।
तो मंच प्रदान करें तो हिंदी की दुनिया बहुत बड़ी है।
जी हाँ बिल्कुल। तो प्रिय श्रोता और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप?
नहीं गुरुजी, आज के लिए इतना ही, भविष्य में एक और कार्यक्रम में हम और जानकारी बांट सकते हैं।
क्यों नहीं
जी,
आपका स्वागत करेंगे हम
जी।
तो प्रिय श्रोता, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने हिंदी से संबंधित श्रीमती अंजू घरभरन जी को सुना। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में सुनील लक्ष्मण जी का पूरा सहयोग रहा। अगले कार्यक्रम तक मैं डॉक्टर डुबरत सिरतन और श्रीमती अंजू घरभरन जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
सादर नमन।
क्षितिज एक